For vacation in London with my children, and for sure I don't like to miss the Morley. That's why daily I'm going to Baba Center in London every day, and I am now 1.5 years with Baba, and for sure I'm new with Baba, but Baba know me long years ago, because Baba invited me to his knowledge, and really I'm very, very happy how much Baba knowledge changing my life and changing my vision to the life. Before I came to Baba, we have everything, but something miss in our life. After we find Baba, really this is what we want exactly. The first Morley, I listened to it. I heard Baba at the end, he said, long lost children and now found. I said, yes, this is me. Really, this sentence is touched my heart. I said, yes, Baba, now I found you and you found me at the end. Because I start my journey since 2012, I joined a lot of spiritual school. I used to do meditation, but other kinds of meditation. Really, I didn't found myself, but now 1.5 years, completely my life is changing. And now this Avyakt month, really I felt it is also gift from Baba to us. Because at the end of December, I felt how much energy, love energy in this Avyakt month. So I prepared myself for this month. I said I will make 10th effort, because I came late, so I have to do double effort. And I put in my mind, for this month I will practice how Baba be my companion. Baba, he's my true companion, he's my eternal companion, and he's my cooperative companion. And I start to teach also my children, you are not one, you are two. They told me, who's the second one? I said, God is your... So every time when he came from the stair, I saw my son, who's the second? You are one or two? He said, no, I am two. I told him, who's the second one? He said, God. I said, okay, good. So, and big thanks for Baba and for Didi. She invited me to see the beautiful family. Really, thanks Baba that we have big family. Because when we came to London, my children, they told me, oh, Mama, where are you going in the morning? I told them, I'm going to Morley. They said, oh, again, you will wear the white and wake up early. I said, yes, this is my life. You go enjoy life and I will enjoy my life. And thank you very much. Nice to see you all.
Om Shanti, everybody. Thanks a lot for your lovely welcome. And thank you, Didi, for bringing me here. I think all this are already is in drama. That's why I came here. Myself, Rani Ronali, like this body's name is Rani. And I came to London for my master's. I'm doing in University of Hertfordshire, and I'm staying in Tenishan Road with the sisters. And for me, I have been in this knowledge, Baba's knowledge, for 8 years. I was studying my standard 8 when I got to know Baba, and after that the whole view changed. And all the before also I used to go to pray for deities with my mom, but then I never felt that connection. I used to search is this the real thing or something else? I used to think, no, something else is there. I mean, somebody is there who is controlling us. Something is there, but not this deities, all these different. But then suddenly I came to know about Baba and my own self, soul, consciousness, and all this thing. Then everything changed. And after that, I felt I've been a student. Whole life, I had to learn so many things and all this. But one thing I must say, just keep Baba with you. Everything you feel everything Baba is doing for you, everything will easily done for you. And I have experience about all this. That's why I'm telling, in every situation, each and every situation, I keep Baba with me, then everything easily can done. It can be easily done. Then also Baba also says this thing, when Baba is there, why you don't use the powers and all this. I think it is in today's Murli, I think, that you just keep all these powers from Baba and then use all this. And it's the end, as Baba says, you never know when the end will come. And you have to, today also Baba said that you have to fly. Now is not the time to walk. You have to fly, and others too, with your drishti, you have to make fly others, as Baba said. So It's just that you have to keep Baba every time with you, and Baba will make sure everything is fine for you, and that's all. Thanks a lot. Om Shanti.
Om Shanti. जनवरी मास में बाबा के परिवार से मिलना बहुत ही आवश्यक है, तो इसीलिए खास वहां का जैसे ही भोग पूरा हुआ मुरली के लिए भी मैं नहीं रुकी। हमने तो मुरली पढ़ी थी, फिर गाड़ी में बहनों ने मुरली पढ़ के सुनाई सबको, तो मैं भागते भागते आपके पास आ गई। इस वर्ष लगता है कि जैसे आम तौर से जनवरी हम मनाते हैं, ये तो 51 ईयर्स से हम विशेष ध्यान रख करके विशेष जनवरी मास में तीव्र पुरुषार्थ करते ही रहे हैं, परंतु इस वर्ष कुछ विशेष ही लग रहा था। तो यहाँ के जनवरी मास की तैयारी लंदन में तो मुझे लगता है कि नवंबर मास से ही शुरू हो गई। स्थूल तैयारियां मैं नहीं कह रही हूँ, जिनको वीडियो बनानी होती है वो उसका ध्यान रखते, जिनको कुछ और काम करना होता है उसका ध्यान रखते, परंतु ये आंतरिक तैयारी, ताकि फिर जनवरी मास में कुछ ऐसा वातावरण बना रहे जिसमें हरेक को प्राप्ति हो, बाबा के पुराने बच्चे, नए बच्चे, आने वाले लोग, इस तरह से। तो नवंबर मास में कुछ विशेष कार्य ये रहा, जिसमें एक बहन खास लॉस एंजलिस की है, वो भी हमारे साथ थी, तो एक छोटा सा ग्रुप था और हम लोगों ने खास कई टॉपिक्स पर लेन देन की, बहुत ही खुले दिल से, बहुत ही सच्चे दिल से, क्योंकि ऐसे लगता था कि अब ये जो समय चल रहा है, जितना हम खुद अंदर को साफ करेंगे और अपनी अंदर की तैयारी करेंगे, उतना जो ब्राह्मण परिवार में संबंध है, जिस तरह से बाबा वो संबंध एकता का चाहते हैं, एक की याद, एक के हैं, एक के लगन में मस्त है, एक कार्य में मगन है, ये सब बातें सफल हो पाएंगी। और यदि ब्राह्मण परिवार का संगठन तैयार है, तो फिर बाहर वाले आने के लोग जो है वो उस आकर्षण में आकर्षित होकर के बाबा के नजदीक आ सकेंगे, अथवा जो सत्यों की दुनिया की स्थापना का कार्य है वो भी हम जल्दी में जल्दी संपन्न कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल चाहे जैसे ही दिसंबर ही चल रहा था, उस समय ही ऑस्ट्रेलिया के आग की बातें चल रही थी और बहुत लंबा समय तक चली, जब तक कि बारिश ना आए। फिर बारिश आई तो थोड़ा सा शांति आई, परंतु तब तक तो कितने लाखों के अंदाज में जानवर खत्म हो गए, कुछ थोड़े मनुष्यों की भी हत्या हो गई, परंतु इतना सारा देश का नुकसान हो गया भिन्न भिन्न प्रकार से, तो वो समाचार तो मिलता रहा। बाकी भी पॉलिटिक्स की बातें जो सुनते हैं, उसमें भी लगता है कि आगे क्या होगा, क्या मालूम। अभी ऐसे तैयारियां हो चुकी है, बटन दबाने की जरूरत है। फिर तीसरी बात तबीयत की बात आ गई, तो वैसे भी कई बार मैंने देखा है कि एंड ऑफ दिसंबर जनवरी में कुछ न कुछ प्रकृति की बातें या संसार के घमसान की बातें जरूर होती है। क्यों मालूम है? क्यों? बाबा ने, साकार बाबा ने एक बार ही बताया था, साकार बाबा की जो उस समय की कहानी है, मैं समझती बाबा का कमरा जितना ये सफेद चादर है ना, बस इतना था, बाकी फिर दीवार था, पीछे से स्टॉक था और उसके पीछे से ईशु दादी और लच्छू दादी का कमरा था, तो ये इतना छोटा सा था बाबा का कमरा। तो उसमें एक तरफ जो आप लोग देखते हो आज भी गद्दी पड़ी हुई थी, बाबा की बैठक वहां होती थी, कुर्सी टेबल पर नहीं, बाबा गद्दी पर ही बैठते थे और सेमी लोटस पोस्चर उस पर ही बैठते थे। पीछे की गद्दी भी नहीं थी, सिर्फ नीचे की गद्दी, और दूसरी तरफ खटिया थी और इस तरफ एक छोटा सा टेबल था जिस पर दो कुर्सियां थी, साकार बाबा और बड़ी दीदी दीदी मनमोहिनी वहां पर भोजन करते थे। और गद्दी और खटिया के बाजू में एक छोटा सा टेबल था, उस पर क्या था, उसमें बाबा का थर्मोमीटर था। किस प्रकार का थर्मोमीटर? विश्व के ठंडाई अथवा गर्माई का पता चले, मतलब रेडियो था। आजकल तो रेडियो इतनी भी मिलती है, इतनी भी मिलती है, उस समय इतना बड़ा सा रेडियो था। और बाबा हर रोज सवेरे 6 बजे 3 मिनट, बस 3 मिनट विश्व का समाचार सुनते थे। और जब बाबा सुनते थे कि सब कुछ थोड़ा ठंडा सा चल रहा है, तो बाबा कहते थे कि बच्चों की योग की स्थिति भी शायद थोड़ी सी ठंडी हो गई है। और जब विश्व में कुछ गर्माइश आती है, तो बाबा कहते कि बच्चों की योग अग्नि भी कुछ थोड़ी तेज होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही जनवरी मास आता है, बाबा के बच्चों के सारे विश्व भर में योग पर ज्यादा ध्यान देना अथवा विशेष पुरुषार्थ करने का प्लान बनाना, वो सब बातें शुरू हो जाती है, तो विश्व में भी उसका रिफ्लेक्शन आता। तो आजकल तो लगता है कि इस वर्ष में शायद ज्यादा ही विशेष सभी ने योग किया, क्योंकि विश्व में तो फिजिकल आग लगने लगी। परंतु कहने का मतलब कि ये सब बातें हो रही है, अपने से पूछते हैं कि क्या जो बाबा चाहता है या जो हम अपने से चाहते हैं, क्या हम उस स्थिति को प्राप्त करके चल रहे हैं या नहीं। तो जैसे ही नवंबर मास चला, तो विशेष 6 बातों पर हम लोगों की आपस में गहराई से लेन देन चली। बड़े संगठन में तो इतना गहराई से लेन देन नहीं हो पाती, तो ये बहुत छोटा सा संगठन था। उसमें पहली टॉपिक हम लोगों ने ली प्यार, दूसरी टॉपिक ली रिस्पेक्ट, तीसरी टॉपिक हमने ली वैल्यू। किसी को लगे कि हाँ मेरी कुछ यहाँ वैल्यू है। और चौथी टॉपिक ली अंडरस्टैंडिंग, एक दो के भाव को समझना। और फिर नेक्स्ट टॉपिक ली विश्वास, ट्रस्ट। और लास्ट टॉपिक ली सेफ्टी, किस प्रकार से सेफ्टी का हम अनुभव करते। क्यों? क्योंकि बाबा ने ये कहा है कि बाबा के हर स्थान को ऐसे सेफ्टी का स्थान बना करके रखो जिसमें जो भी आए, ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण संपर्क वाले जो भी, उनको ऐसे लगे कि हम कुछ सेफ्टी के स्थान पर आए हैं जहां पर हमें कुछ प्राप्ति होंगी। यदि व्यक्ति कोई जगह जाता उसको सेफ्टी महसूस नहीं होती, तो फिर वहां पर जो अंदर का डिस्कम्फर्ट फील होता, अपने को चैन नहीं आता, समझते हैं कि जल्दी हम यहां से निकल जाए। परंतु मैंने देखा है कि बाबा के घर में जो आते हैं, घंटे बीत जाते हैं, प्रोग्राम फिनिश हो जाता, तो भी आपस में लेन देन करते रहेंगे, कोई जानी नहीं चाहता। ऐसे देखा होगा ना, यहां भी चाहे कहां पर भी बाबा के स्थान पर ये विशेषता है। तो उसको और हम आगे कैसे बढ़ाएं, तो ये जो 5 बातें बताई पहले, उस आधार पर सेफ्टी की जगह बन सकती। उसमें पहली टॉपिक प्यार, ये तो हर एक मैं समझती अपने ब्राह्मण जीवन में चल ही रहा है क्योंकि बाबा के प्यार का अनुभव है। और यदि प्यार का हमें अनुभव न होता तो बाबा कहते बहुत सहज मार्ग है। सहज तब है जबकि प्यार में हम लवलीन रहते, और बाबा के प्यार की कुछ कमी होती हम, बाबा तो सागर है, बाबा तो दे ही रहा है, परंतु हमारे तक वो प्यार पहुंच नहीं पा रहा, उसका कारण कुछ होगा ना? उसका कारण कि हमने पूरा कनेक्शन नहीं जोड़ के रखा है। तो जो सागर देने चाहता है, जो बिल्कुल इलेक्ट्रिक पावर हाउस है, वो हमें बैटरी को फिल करने चाहता, वो उसकी तो कमी नहीं होंगी, वो तो है ही फुल, देने के लिए तैयार है। जैसे आज भी बाबा ने कहा, बाबा तो चाहता है आप पूरा सब कुछ ले लो, आप अधूरा लेके खुश क्यों होते? कभी ऐसे सुना कोई बाप कहे सारा ले लो और बच्चे कहे नहीं मुझे सारा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा ही चाहिए, बस थोड़ा सा ही दे दो, या कहे कि मुझे आधा ही दियो, और फिर आधा लेकर के फिर कंप्लेन करे मुझे मिला नहीं। वंडरफुल बात तो ये है, अच्छा चलो आधा आपने ही चुन के लिया, परंतु फिर कंप्लेन तो नहीं करे ना कि बाबा क्यों नहीं दे रहा, हमको क्यों नहीं प्राप्ति हो रही। दिस इज द पैराडॉक्स, कमी होती है अपनी और ब्लेम हम करते हैं बाबा को। यह है मानव का स्वभाव, खुद अपनी जो कमजोरी होती, खुद जो अपनी कमी होती, तो उसको जल्दी स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं होते हैं, उंगली सदा यहाँ आगे उठाते हैं, तीन उंगलियां अपनी तरफ है वो नहीं देख पाती हैं। जैसे आज भी बाबा ने कहा, बस ये तीन बातें हैं, परदर्शन, परपंच और परचिंतन। इन तीन बातों को मिटा करके स्वदर्शन और स्वचिंतन में रहे तो ओहो सौभाग्य, कितना सब कुछ प्राप्त हो सकता। तो प्यार ऐसी बात है जिसमें यदि बाबा से हमें प्यार मिल रहा है और हम अपने को प्यार में भरपूर करते जा रहे हैं, वो दो बातें जल्दी नजर आती जो परिवर्तन होता है जीवन में। एक तो उस आत्मा को पूर्व की बातों का कोई दुख नहीं होगा। आप सोचो ब्राह्मण जीवन में बाबा से हम प्यार ले रहे हैं, परंतु आज तक भी पास्ट की बातें कितनी हमने अपने पास जमा रखी है, जिस कारण से आज तक भी सबके साथ हमारा प्यार भरा संबंध हो उसमें कुछ न कुछ कमी पड़ जाती। फिर कहेंगे हाँ मैंने तीन लोगों को तो उन्होंने मेरे से बहुत धोखा दिया, तो दो लोगों को तो मैंने फॉरगिव कर लिया, एक को बाकी मैं नहीं कर सकता, काम चलेगा? एक का भी जो जख्म है अंदर, अंदर दुख भरा हुआ है, वो दुख जब तक नहीं मिटा तब तक हम सुखदाता नहीं बन सकते। बाबा क्यों कहते हैं दुख न लो, दुख न दो? एक बात, दुख लेते हैं तो वो जख्म और जो पॉइजन अंदर होता उस कारण से मुख से कड़वा शब्द निकलता। अभी दुख इसने दिया होगा परंतु भाषा कड़वी हो गई तो वो सिर्फ एक के साथ नहीं होंगी, फिर जिसके संपर्क में आएंगे सबके साथ उसी टोन से हम बात करेंगे। इसका दोष नहीं है, परंतु इस व्यक्ति को सामने देखते अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं हो पाता, वो जो दुख अंदर समाया हुआ है वो निकल आता, तो हम दुख देने के निमित्त बन पाते। हम सुख देवे, क्योंकि सेवा क्या है? एक दिन दादी जानकी ने कहानी सुनाई, अपना एक बहुत मुख्य भाई है जो मैं समझती मेरा भाग्य था उससे मिलने का, ताकि शायद और कोई उससे मिले नहीं। दादियां उसको भाव कहती थी, भाव बड़ा भाई, और हम उसको दादा विश्व किशोर कहते थे। और दादी तो इतना तक कहती थी कि ये नेक्स्ट नारायण होगा, अभी किसको मालूम फाइनल तो बाबा जब डिक्लेयर करेगा, परंतु जैसे जिसके गुणों और कर्तव्य नजर आते हैं उस अनुसार दादियों के दिल से कुछ ऐसी बात निकलती। तो इस भाई के लिए दादी ऐसे वर्णन करती थी। तो वो कई बारी बाबा के कार्य के लिए भारत में चक्कर लगाता रहता था। जो सारा प्रबंध था मकानों का कराची में, आप सोचो कि बाबा हैदराबाद से कराची आए, और उस समय बाबा को मालूम ही नहीं था कि 350 लोगों के लिए मुझे घर का प्रबंध करना होगा। अचानक ये सब पहुंच गए, तो बाबा तो भागदौड़ नहीं करेंगे। बाबा का बुद्धि, बाबा का प्लान और कर्तव्य करने वाला दादा विश्व किशोर, विश्व रतन दादा अलग, कहीं मिक्स कर लेते हैं वो अलग, वो तो कईयों ने यहां पर जो बैठे हैं उन्होंने देखा। मकानों का प्रबंध करना, म्यूनिसिपल अथॉरिटी से सारा बाहर युद्ध चल रहा है, पार्टीशन वॉर चल रही है, हर प्रकार से बाबा के बच्चे सेफ्टी से रहे, उनको सब कुछ मिलता रहे, कोई तकलीफ न हो। फिर सारा शिप का प्रबंध करना, परमिट्स लेना, फिर ट्रेन का प्रबंध करना, वहां ओखा हार्बर से आबू तक आना, ये सब इस एक व्यक्ति ने प्रबंध किया। इससे आपको पता चलेगा कि जैसे बाबा की बेहद की बुद्धि, नेक्स्ट इसकी बुद्धि। तो वो भारत में भी फिर बाबा उसको कई काम देते थे यज्ञ का, तो वो चक्कर लगाते थे भारत के अंदर, और कई बारी पूना आना होता था, दादी वहां पर रहती थी। तो दादी को एक दिन उसने पूछा, मुझे ये बताओ, शुरू शुरू की बात है, मुझे ये बताओ कि आपने सुख कितनों को दिया है, ये नहीं बताओ कि कोर्स कितनों को किया है, ये नहीं बताओ कि भाषण कितने किए हैं, कितने लोग भाषण में आए, परंतु बाबा का सुख का अनुभव कितनों को हुआ। तो ये है थर्मोमीटर सेवा का, विश्व की ठंडाई गर्माई का थर्मोमीटर अलग, परंतु सेवा का थर्मोमीटर किसको वो बिल्कुल आंतरिक सुख की भावना आए, क्योंकि आपने उसका बाबा के साथ संबंध जोड़ के रखा। मैंने तो उसने भी की, परंतु आपने वो काम किया जिससे खुद नहीं परंतु बाबा के साथ संबंध जुड़वा लिया। तो जबकि अपने अंदर कुछ दुख होगा तो हम ये सेवा कर पाएंगे। जब हमने बाबा से इतना प्यार लेकर के बाबा के द्वारा वो अंदर की हीलिंग हो गई होंगी, दोष उसका दोष मेरा, इट डजंट मैटर, कुछ भी कारण से जो मेरे अंदर वो ठेस लगी हुई है उसको कौन मिटाएगा? बाबा, और कोई नहीं मिटा सकता। उस व्यक्ति के साथ आप कितना भी बैठ के डिबेट करो, तुमने ये किया मैंने ये किया, फालतू, बिल्कुल फालतू, उससे कुछ नहीं फायदा। परंतु बाबा का प्यार लेकर के हमने अंदर की बाबा की हीलिंग की, तो उससे जो मेरा मन और दिमाग और दिल शीतल हो गए, तो फिर बाबा का प्यार जो अंदर में पहुंच गया, फिर मैं भी बाबा के समान अन्य आत्माओं को बाबा का प्यार, मेरा प्यार नहीं, बाबा का प्यार देकर उन आत्माओं को बाबा का सुख दे सकेंगी। तो हम प्यार को तो हम बहुत अच्छी तरह से मानते हैं और ध्यान भी रखते हैं, परंतु इस बात से आपको पता चलेगा कि हमारा दुख चला गया, कहां तक हम पहुंचे, और दूसरा फिर कहां तक हरेक के साथ हमारा मीठा व्यवहार चला। साकार मूल्यों में ये मीठा शब्द बहुत आता। और बाबा को कई बार कहते थे ना कि बाबा बच्चे मीठे तो है ही नहीं और आप मीठे मीठे बच्चे कह रहे हो। तो बाबा का उत्तर होता था, बच्चे मैं तो हर बच्चे को मीठा ही समझता हूँ, परंतु मैं बच्चों को याद दिलाने चाहता हूँ, तो मीठा मीठा कह करके बच्चों को मीठा बना रहा हूँ। उनको याद दिला रहा हूँ। एक बार दादी को बहुत अंदर मन में कुछ ठेस लगी, क्यों? क्योंकि पूना में दादी को टेप रिकॉर्डर था और फिर अहमदाबाद में नया सेंटर था, वहाँ कुछ था ही नहीं, बस बहुत सिंपल। तो अहमदाबाद आबू बहुत नज़दीक है, तो फायदा ये था कि दादी जल्दी जल्दी आबू जा सकती थी। तो दादी ने बाबा के साथ बातचीत की कि बिल्कुल अहमदाबाद बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सेवा की जगह बढ़िया है, परंतु एक बात की कमी है। तो दादी ने ये कहा कि बाबा टेप रिकॉर्डर नहीं है और जो मुरली आती है उसमें जो लिखने वाले हैं मुरली वाले, वो जितना टेप में बाबा का एक्यूरेट मुझे वो मिलता है हर दो सेंटेंस के बाद, मीठे बच्चे मीठे बच्चे, वो हमको मुरली में नहीं मिलती। वो लोग समझते हैं कि ये तो रेपिटेशन है तो वो कट कर लेते। तो बाबा ने कहा बस इतनी सी बात है ना। अच्छा ठीक है, तुम्हारे अहमदाबाद पहुंचने से पहले वहां पर टेप हाजिर होगा। और रियलिटी फिर बाबा ने दिल्ली में प्रबंध किया, दिल्ली से अहमदाबाद पहुंच गया, दादी दो दिन के बाद वहां गई, टेप रिकॉर्डर था। दादी की ये जो भावना थी, मैं बाबा का बार बार ये शब्द सुनूं, मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे, वो दादी की आश पूरी हुई। तो मतलब जितना हम बाबा से प्यार लूटते हैं, जितना हम बाबा के ज्ञान का कदर करते हैं, प्राप्ति होती है, उतनी आत्मा के अंदर वो मिठास आती जाती। और मिठास की कमी है दृष्टि में, बोल में, कर्तव्य में, उसे पता चलता कि अभी तक इतना प्यार शायद बाबा से लिया नहीं है। तो एक तो खुद का पुरुषार्थ क्या होता कि हम सोचते हैं कि हम वातावरण को कैसे शक्तिशाली बनाएं, परंतु इंडिविजुअल जो पुरुषार्थ चलता है उस आधार पर दो होंगे, पांच होंगे, 400 होंगे, फिर वो वातावरण हम बना पाएंगे। सिर्फ आप ध्यान रखो वातावरण पर, वातावरण कैसे बनेगा? या ये आप कंप्लेन करो वातावरण इतना शक्तिशाली नहीं है, किसको कंप्लेन कर रहे हैं? परंतु मैं अपने पुरुषार्थ से मैं कंट्रीब्यूशन क्या कर रही हूँ वातावरण में, वो हम देख करके फिर उस अनुसार हम इतना प्यार का वातावरण बना सकेंगे। और प्यार का व्यवहार जो होगा उसकी खुशबुएं पहुंचती जाएंगी औरों के पास। बाबा के कार्य में और भक्ति में ये महान अंतर है। कितना भी भिन्नता हो संस्कारों की, और साकार मूली में तो आपने सुना है दो का चेहरा मिल सकता। जिसको हम आइडेंटिकल ट्विन्स भी कहते हैं, जो उनके नजदीक होंगे उनको मालूम होगा कि ये जो है या ये माइकल है। अपने पास ये जो ऑस्ट्रेलिया के दो बड़े मोटे तगड़े पांडव है, जो नए होंगे वो कहेंगे कौन है, जो है माइकल है, पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी इतनी शक्ल मिलती जुलती है। परंतु जो जानने वाले हैं ऐसे नहीं कहेंगे, उनको मालूम है Something is different। तो कहने का मतलब कि जबकि चेहरा भी बदल दो न मिले एक से, इसी तरह से संस्कार एक दूसरे के समान हो वो तो नहीं होगा। समानता किस बात में? सत्व प्रधानता में। दीदी दादी, दादी गुलजार, दादी जानकी, कोई उन्होंने अपना दिल को वॉश करके सेम संस्कार उस हिसाब से तो नहीं बनाया, परंतु एक एक में वो सतो प्रधानता की प्योरिटी की भासना, फिर भी कहेंगे दीदी का जो बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि थी वो विशेष थी, दादी जी का जो प्यार का स्वभाव था वो विशेष था, दादी गुलजार की जो साइलेंस शक्ति थी वो आज तक भी हम अनुभव करते हैं, और दादी जानकी की जो विजडम है वो विशेष, बिल्कुल हर समय नवीनता नवीनता। तो सेम, परंतु सेम किस बात में? सत्व प्रधानता प्योरिटी में, परंतु संस्कार अलग अलग, परंतु बात क्या करेंगे? एक ही बात करेंगे। ऐसे कि यहां से आपको दूसरी राय मिलेंगी, यहां से दूसरी राय नहीं, एकता। तो जब इस प्रकार से हम अपने में प्यार बाबा का भरते जाते हैं, तो वो जो एकता एक समानता बाबा के समान वो सबको नजर आती है, उससे लोगों को पता चलता कि यहां कुछ विशेष कार्य है। और स्थानों पर फाउंडर चला जाता, दो टुकड़े, तीन टुकड़े, चार टुकड़े भी हो जाते, परंतु बाबा के समय बाबा था, फिर बाबा ने दादियों को निमित्त रखा और आज तक भी बाबा और दादियां चला रही है। तो एक परिवार की भासना, कोई भी जगह पर आप जाओ, आप उड़ीसा में जाओ, चाहे आप कुवैत में जाओ, चाहे आप लेस्टर या लंदन में आओ, फीलिंग क्या आएंगी सबको? हम बाबा के घर पहुंच गए हैं, बाबा के स्थान पर पहुंच गए हैं, वाइब्रेशंस वो नजर आते हैं, इतनी प्यार की शक्ति। सेकंड, रिस्पेक्ट। कहां तक हम खुद अपने स्वमान की स्थिति में स्थित है? आज बाबा ने कहा स्वस्थिति, स्वास्थिका। स्वस्थिति में पहली बात है स्व को पहचानना, स्व के लिए इतना हमें स्वमान हो, जो बाहर की बातें कोई भी हमें हिलाने चाहे हम उस स्थिति में स्थित रहें। लेस्टर का खास कनेक्शन है दादी रतन मोइनी के साथ, उन्होंने बीज डाला और फिर यहां का भी मकान की ओपनिंग की। दादी रतन मोइनी 11 साल की थी जब समर्पण हुई, आप सोचो। और ऐसे नहीं कि माँ ने कहा चलो तो चल पड़ी, दादी रतन मोइनी की भी बुद्धि विशेष है। तो दादी रतन मोइनी एक दिन बता रही थी वो कौन सा जादू था जिस आधार पर हम सब कुछ, और उसका परिवार भी बहुत ही विशेष था, कोई साधारण परिवार नहीं था, परंतु दादी रतन मोइनी और उसकी माताजी दोनों ही समर्पण हुए। और कहती है कि बस एक ही ये हमको स्वमान की बात का पता चला, हम उसको भूल नहीं सके, हम हैं बाबा के बच्चे, परमात्मा की संतान, मैं हूं आत्मा, शिव परमात्मा की संतान। बस वो जो स्वमान हमें मिला, हम किसके हैं, लौकिक हिसाब से जिसका जो बच्चा होता है, बच्चे को नशा होता है मेरा बाप ये है, तो इस स्थिति में, स्व स्थिति में हम किसके बच्चे हैं, हम कौन है? कहती है कि बस वो जो हमको दिमाग में बात बैठ गई, नया जन्म हम किसके हैं, तो वो जो हमारी स्व स्थिति थी, कोई भी हमको ये नहीं कह सकता था कि वापस घर चलो, उनको हिम्मत ही नहीं आ सकती थी, हम इतने मजबूत थे अपने नए जन्म में स्वमान की स्थिति में, जो बस सब कुछ हमें मिल गया, हम किसके बच्चे हैं। तो कहती है कि आजकल मैं देखती हूं कि आप लोग कहते हो कि हम शिव बाबा की संतान है, परंतु वो जो हमें नशा होता था, वो जो रौनक होती थी, और वो जो दिन भर वो हमारी स्थिति बनी रहती थी, ध्यान रहता था उस बात पर, आजकल कुछ और है। परंतु अब भी जबकि अंतिम घड़ियां चल रही है, तो हम ये देखें कि कहां तक हमारा स्वमान की स्थिति है। स्वमान की स्थिति होगी तो आप अचल अडोल रह सकेंगे, स्वमान की कमी है तो फिर हम सेंसिटिव हो जाते हैं। सेंसिटिव का दो भाव होता है, एक अच्छा, एक इतना अच्छा नहीं। अच्छा है, सेंसिटिव मतलब कि आप औरों के भाव को जल्दी पकड़ सके, परंतु अच्छा नहीं, औरों की बातें आपकी ठेस लग जाती है बहुत जल्दी में, नाजुक। जैसे कांच होता है, थोड़ा सा कुछ लग जाता तो वो टूट जाता। तो दादी कहती थी कि आप कांच नहीं बनो, हीरा बनो। हीरे को कोई भी बात लगती है क्या असर होगा? कुछ भी नहीं, हीरा तो इतना मजबूत है। तो इस तरह से हमारी स्वमान की स्थिति हमें मजबूत बनाती है। हम अपनी स्थिति में हिलते नहीं है, अचल अडोल रह पाते, परंतु उसका फिर रिजल्ट हर एक बड़ा छोटा उनको हम अच्छी तरह से मान दे सकते। आप सोचो कि एक बहन ने एक बारी दादी से पूछा कि दादी मुझे उसमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कोई विशेषता जो मैं उसको मान दूं। दादी ने क्या कहा होगा? कुछ तो कहा होगा। दादी ने उसको कहा कि मैं तो ये नहीं मानती हूं कि उसमें गुण नहीं है, मैं तो बहुत गुण देखती हूं, परंतु ये भी बात छोड़ो, मैं आपको ये नहीं कहती हूं कि उसके गुणों को देखो, आप ये सोचो मुझे अपना किस प्रकार से संस्कार बनाना है। मुझे देवता बनना है तो मुझे अपना संस्कार ये बना करके रखना है कि मैं हरेक को मान दूं। तो मुझे अपने संस्कार बनाने के लिए ये बहुत आवश्यक बात है कि मैं हरेक को मान की दृष्टि से देखूं, नहीं तो मेरे संस्कार में वो कमी पड़ जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात, नहीं तो हम कहते ना क्यों हम उसको मान देवे, भूल जाओ, ये बात सिद्ध करने की नहीं है। मुझे अपने लिए क्या करना है, मैं वो देख करके अपनी स्थिति को ऐसे बनाऊं। तो स्वमान की बात, अपनी स्थिति में अचल रहने की बात, अपना संस्कार ऐसे बनाने की बात आती। तीसरी बात, वैल्यू। कई बार लोग कहते हैं हमारी तो यहां कुछ वैल्यू ही नहीं है, इसे तो अच्छा है कि हम दूसरी कहीं जगह चले जाएं। परंतु उसका मुख्य कारण क्या? हर बात में बाबा कहते हैं पहले खुद को देखो, अंदर जाके देखो, स्वदर्शन, परदर्शन नहीं। स्वदर्शन में हमें ये पूछना है मुझे अपने लाइफ की वैल्यू है, मुझे अपने श्वास की वैल्यू है, मुझे अपने समय की वैल्यू है, मैं अपना समय किन बातों में दे रही हूं। उससे आपको पता चलेगा कि मुझे अपनी लाइफ की कितनी वैल्यू है, और यदि मुझे अपनी लाइफ की वैल्यू है, कभी भी ये बात नहीं आ सकती कि दूसरा मुझे वैल्यू ना करे, दूसरा मेरे टाइम को वैल्यू ना करे। परंतु स्टार्टिंग पॉइंट हर बात में खुद का, तो ये आप चेक करके देखो, मुझे अपनी लाइफ की वैल्यू है, मैं अपना समय, अपना श्वास, अपना संकल्प किस प्रकार से यूज कर रही हूं। तो आपने इस बात का ध्यान रखा तो बस फिर आपको ये परवाह नहीं होगी वो मेरी वैल्यू रखे ना रखे, इट्स देयर प्रॉब्लम। मुझे अपनी लाइफ का वैल्यू है तो मैं अपना समय व्यर्थ न गवाऊं, मैं अपने समय को अच्छी तरह से सफल करती रहूं। तो जहां पर खुद अपनी वैल्यू है तो हम वातावरण को भी क्या बनाकर रखेंगे, हरेक अपना वैल्यूबल समझेगा रोल। साकार बाबा के सामने जब शुरू शुरू में एक सेमिनार रहा था और बाबा मुझे वहां ले चले, एक कहानी मैंने बताई है यहां, तो उसमें एक बात बहुत अच्छी किसी ने बोली, उन्होंने बाबा सुन रहे थे, ये है 67 की बात, तो बाबा उन्हों की बातें सुन रहे थे कि उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया था, दादियां भी थी, बड़े भाई भी थे। तो उसमें बाबा के सामने ये बात निकली कि ये हमारी आपस में चर्चा चली कि इंजन कितनी भी बड़ी इंजन हो, बढ़िया इंजन हो, उसमें एक छोटा सा कहां पर स्क्रू ढीला होता, छोटा सा स्क्रू, इंजन काम की नहीं होंगी, काम ही नहीं करेंगे। कुछ समय पहले मैं दुबई में थी तो कुछ अपने भाइयों का कुछ बड़ा कार्य शुरू हो रहा था लौकिक हिसाब से, तो उन्होंने एक बड़ा कमरा बाबा के लिए भी बनाया था और साथ में एक क्लासरूम भी बनाया था ताकि करीब 160 लोग वहां काम करने वाले थे। तो कहते थे कि बाबा का भी कमरा हो, क्लासरूम भी हो, ताकि जो आने जाए पहले सवेरे आकर बाबा के पास बैठे, फिर क्लास भी करे आदाद। तो उनको अपने लिए घर में तो है या खुद तो सेंटर पर आते, परंतु स्थान पर भी कोई ऐसे स्थान बना रहे, उनका ये बहुत अच्छी भावना थी। फिर मुझे 2-3 मशीनें दिखाई, फिर एक मशीन के पास लेके गए और कहा कि ये मशीन इटली से लोग आए हैं देखने के लिए, जर्मनी से लोग आए हैं देखने के लिए, परंतु पता ही नहीं चलता है कि पता नहीं क्या है। तो हमारे मन में ये है कि हम सब 3 मिनट बाबा की याद में यहाँ खड़े हो और आप बटन दबाओ और शुरू हो। तो मैंने सोचा कभी बाबा की तो ऐसे टेस्ट नहीं ली है मैंने कि बाबा आप मशीन को चालू कर दो, ये तो नई बात मेरे सामने आई है। तो मैंने कहा इट्स अप टू बाबा, मैं क्यों सोचूं ज्यादा। तो बस बाबा की याद में हम खड़े रहे और फिर कुदरत से 3 मिनट की याद के बाद बटन दबाया, चल पड़ी। क्या हुआ अंदर, क्या गड़बड़ है, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं, मैंने कोई मशीन खोल के नहीं देखी, परंतु रियली ऐसे ही फिर मशीन चालू हो गई। तो ये किसकी जो भावना होती है, बाबा कहते नहीं कि कुछ भगत लोग हैं, बाबा के बच्चे हैं परंतु कुछ भक्ति के भी संस्कार है, तो वो फिर भावना भी पूरी बाबा कर देता। परंतु एक छोटी सी स्क्रू की भी वैल्यू है। तो यदि कोई कहता है कि बाबा का कार्य तो बहुत बड़ा है, कभी मुझे स्टेज पर नहीं बुलाया जाता, कभी मुझे ये चांस नहीं मिलता है, जो बाबा मुझे चांस दे रहा है, जितनी मैंने अपने समय श्वास संकल्प का कदर रखा होगा, वैल्यू रखी होंगी, उतना वो मेरा सब कुछ सफल हो रहा है। और जहां मैं हूं, जो भी बाबा मेरे से कराए, उसकी वैल्यू है। तो यदि ये मेरे बुद्धि में ये बात फिट है, थोड़ा सा भी जो हम कर रहे हैं बाबा के लिए, बाबा को तो वैल्यू है उसकी, मनुष्यों को वैल्यू हो ना हो, बाबा को तो वैल्यू है, तो मैं अपनी स्थिति को उसमें बिल्कुल स्थिर रखूं और मनुष्यों की बातों में हिलने न दूं। तो अचल अडोल स्थिति के लिए ऐसा नहीं है कि मुझे हट से योग में बैठ जाना है, हिलना नहीं है, नहीं, बुद्धि कहां मेरी हिले नहीं, ये है बात। तो पहले लव और फिर रिस्पेक्ट, फिर वैल्यू, फिर अंडरस्टैंडिंग, ये 3 बातें तो मेरे अंदर की धारणा की है बस। फिर अंडरस्टैंडिंग की जब बात आती है तो फिर उसमें लेन देन की बात आती है। और आपने देखा होगा संबंध जो हमारा बिगड़ता है किसी के साथ, हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। छोटी सी बात कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु छोटी सी बात में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर वो लेन देन में बिगड़ गई। और जितने लोगों को इन्वॉल्व करो तो वो और ही आटे में कुछ न कुछ मिर्ची मसाला डालेंगे और ही वो बात गड़बड़ की होती जाएंगी। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत आवश्यक है। तो अंडरस्टैंडिंग पहले कहां से शुरू होती है, मैंने खुद को कहां तक पहचाना है, परंतु उसमें फिर औरों के साथ भी पुरुषार्थ की बात आती कि यदि हमने खुद को अच्छी तरह से समझा है, दोनों तरफ की बातें, गुणों की भी अवगुणों की भी, बाबा ने हमें जो शिक्षा दी है ऊंच उठाने की, बाबा तो पहले हमें अपनी असली स्थिति का जो याद दिलाते हैं, तुम्हारे अंदर कौन सी गुण है, तुम्हारा आदि स्वरूप क्या, अनादि स्वरूप क्या, तो पहले तो हम उस बात को समझें और अनुभव करें, फिर उस विश्वास से हम और बातों को भी देखें। मैं समझती बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने खुद को कुछ हद तक भी समझा होगा बाबा के पास आने से पहले, और कई हैं यहाँ जो बचपन में आ गए बाबा के पास या छोटेपन में आ गए बाबा के पास। मैं तो कहेंगी कि जब मैं 19 इयर्स की बाबा के पास आई, मैंने अपने को तो शायद 1% ही समझा होगा, 1% ही जाना होगा। धीरे धीरे वो बात देखते गए, समझते गए, अंडरस्टैंड करते गए, और जब तक खुद को नहीं अंडरस्टैंड किया है, समझा नहीं है, तब तब हम बिल्कुल ही दूसरे को समझ नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं ना, नयों को आइसबर्ग ऊपर से 1% नजर आता, 1/10 नजर आता, 9/10 पानी के नीचे हैं, देख नहीं पाते हैं कि इतना नीचे कहां तक गहराई है। तो हम समझते हैं कि मोह मेरे में मोह थोड़ी है, मैंने तो अपना बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया है, मैं सचमुच बाबा का ट्रस्टी हूं, किसी के साथ भी मेरा मोह नहीं है। और फिर धीरे धीरे पता चलता कि किस तरह से कहां पर रगे जुटी हुई है जो हमें देख करके संभाल के उसको फिनिश करनी है, संभाल के, ऐसे भी नहीं कि ऐसे काटे जो खून निकले, परंतु शांति से, प्यार से, अंडरस्टैंड करके वो समाप्त करें। तो हर विकार की जो बात आती, बाबा कहते हैं कि देखो कि उसका अंश तो नहीं है, आज भी बाबा का था, अंश होगा तो फिर वो पुरुषार्थ में रुकावट डालेगा, तो अंश मात्र भी वो फिनिश हो जाए। खुद को इतना हम समझे और खुद के ऊपर इतना पुरुषार्थ करें, तो फिर औरों को हम धीरे धीरे समझ पाते हैं। बाबा बहुत अच्छी बात कहता है, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मुझे पहचानो। बाबा तो बहुत ट्रांसपेरेंट है, बाबा लिटरली जो है जैसा है पहले से ही बता देता। कुछ बात छिपी हुई है बाबा की, बाबा कौन, बाबा क्या, बाबा का कर्तव्य क्या, बाबा के गुण क्या, और बाबा जो नहीं करता है वो भी बता दिया। मनुष्य कई बार आपको बताएंगे वो आपके लिए क्या क्या कर सकते, परंतु ये नहीं बताएंगे कि आपके लिए क्या नहीं करेंगे। आपको शमशान की गेट तक पहुंचाएंगे परंतु आपके साथ में चलेंगे ये आपको नहीं बताएंगे, परंतु भगवान हर बात क्लियर करके बताता कि ये मैं कर सकता हूं और ये मेरा धंधा नहीं है, आपकी तबीयत है, आपका हिसाब किताब है, आप उसको योग से चुक्त करो, मैं नहीं उसको चुक्त करूंगा। तब उस समय चिल्लाओ, हे भगवान इतना दर्द क्यों, भगवान ने पहले से ही बता दिया, जितना आप योग लगाएंगे, जितना आप अशरीरी होंगे, उतना बाबा आपकी आपकी जो शक्ति है, बाबा की शक्ति मिलती रहेगी और फिर दर्द सहन कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि दर्द चला जाएगा, सहन करने की शक्ति आएंगी। तो कहने का मतलब कि भगवान को समझना फिर भी सहज है, दूसरे मनुष्य को समझना खुद को ही नहीं समझा है तो औरों को हम कहां तक समझ पाएंगे रियली। और है जबकि 84 जन्मों की कहानी, किस जन्म में क्या चला, क्या कहानी थी, कोई हमको बैठ के देखने की जरूरत नहीं है, परंतु इतना तक तो हम समझ सकते हैं कि अभी तक मुझे चलो 1/10 नहीं, आधे तक शायद पहुंचे होंगे, 5/10 तक हमने खुद को समझा। अभी और पुशारत करने की जरूरत है और सफाई करने की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ही है कि आत्मा इतना स्वच्छ हो, खुद को समझे, बाप को समझे, और बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर हो जो दूसरे के भाव को भी समझ सके। जो शब्द बोल रहे हैं वो अलग बात है, शब्दों के पीछे उनका भाव क्या है उसको मुझे समझने की जरूरत है। तो अंडरस्टैंडिंग यदि होती है तो फिर संबंध वो नजदीक समीप हो जाता, अंडरस्टैंडिंग यदि नहीं है तो दूरी होती जाती। आपका भाव क्या, मेरा भाव क्या, स्पष्ट होना चाहिए। और फिर अंडरस्टैंडिंग के बाद ट्रस्ट, विश्वास। एक दिन बहुत अच्छी बात दादियों ने आपस में बातचीत की थी, जो फिर दादियों ने हम लोगों को भी सुनाया, तो उनकी ये बात निकली कि हम देखते थे कि बाबा का विश्वास किस में है। हम सबका विश्वास बाबा में है, परंतु हम देखते थे कि बाबा का विश्वास किस में है। और ऐसे भी नहीं कि बाबा किसको कहते थे आप विश्वास पात्र नहीं हो, बाबा ने कभी ऐसे कह करके दुख नहीं दिया, परंतु हम देखते थे कि इस आत्मा के प्रति बाबा विशेष उनको मदद करनी चाहता, रहम करके उनको कुछ और सहयोग देनी चाहता, आगे बढ़ानी चाहता, ताकि वो और विश्वास पात्र बने। परंतु बाबा का विश्वास हमारे में हो, आप सोचो कितनी बड़ी बात है। जिस घड़ी बाबा अव्यक्त हुए और बाबा ने दीदी और दादी को चुन करके उनके सिर पर गुलाब की फूल रख करके ताज रखा, बाबा जानते थे कि इन आत्माओं के अंदर किस प्रकार से कैपेसिटी है। दीदी को भी बाबा जानते थे और दादी को भी अच्छी तरह से जानते थे, तो वो देख करके उनको विश्वास पात्र समझ करके, और फिर तो सब दादियां, परंतु विशेष तो पहले इन दो को रखा, फिर बाद में दादी जी के साथ दादी जानकी और दादी चंद्रमणि को रखा, फिर दादी चंद्रमणि भी चल पड़ी ऐसे चेंज होते गए हैं। परंतु हमारा विश्वास बाबा में है, परंतु और बातें भी आती हैं। मेरा विश्वास खुद में है, क्योंकि मैं अपनी गलतियों को जानती हूं, आप नहीं जानते हैं मैंने कौन सी गलतियां की है, मैं जानती हूं। वो समझ करके फिर भी क्या मेरी स्थिति ऐसी है जो बाबा यदि कहता है कि बच्चे अभी एंजल बनना है, अभी फरिश्ता स्वरूप धारण करके सेवा करनी है, क्या मैं विश्वास से कह सकती हूं कि हाँ सचमुच जो बाबा मुझे कह रहा है मैं वो कार्य कर सकती, मुझे फरिश्ता बनकर विश्व की सेवा करनी है। हमारा विश्वास ही नहीं है कि मैं वो सेवा कर सकती हूं तो कैसे होंगी। आज मैं खुद अपने को क्रिटिसाइज कर रही हूं, खुद अपनी गलतियां देख रही हूं, चाहे पूर्व में कुछ मिस्टेक्स किए हैं वो बार बार याद आ रही हैं, मैंने खुद को फॉरगिव नहीं किया है। तो एक गीत आता जिसमें इंग्लिश गीत है लुसिंडा का, उसमें ये शब्द आता कि मैं तो रो रही थी और आपने मेरे सिर पर प्रकाश का ताज रखा, राइट तो हम तो क्या थे, परंतु बाबा ने हमारे में विश्वास रख करके कहा आप तो देवता थे। फिर बाबा ने कहा कि देवता बनने से पहले तो आपको फरिश्ता बनना है, देवता ही सेवाधारी नहीं है, फरिश्ते अपने लिए नहीं जीते हैं, फरिश्ते तो भगवान का संदेश देने के लिए जीते हैं, अथवा मानव की रक्षा करने के लिए जीते हैं। तो जो मानव है उनके रक्षक है एक तो भगवान और दूसरा फरिश्ता। जैसे बहन बता रही थी ना कि देवताओं के तो 33 करोड़ देवताएं हैं भारत में। एक अभी एयर इंडिया का एक बैग आया, उसमें स्लोगन लिखा हुआ था क्योंकि वो लोग आए थे मिलने के लिए, तो एक बैग पर लिखा था यू फील सेफ इन अ लैंड ऑफ 330 मिलियन गॉड्स। तो उन्होंने भी 33 करोड़ देवताओं की बात उठाई है, परंतु वो तो उनकी एडवर्टाइजिंग का, बट आई थॉट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो कहने का मतलब देवता बनना ठीक है, परंतु देवताओं ने सेवा करके देवता बनी है, देवता रूप में कोई सेवा की जरूरत नहीं है, परंतु फरिश्ते स्वरूप में सेवाधारी, अपने लिए कुछ भी नहीं, न रिश्ता न नाता न अपने लिए कुछ समय की बात, फरिश्ते सब बातों से ऊपर। तो पहले तो मैं अपने में विश्वास रखूं कि यदि मेरा भाग्य है बाबा के सामने बैठने का, तो बाबा मुझे कह रहा है अपने फरिश्ता स्वरूप को याद करो, इमर्ज करो, तो मुझे ऐसे अपनी स्थिति को बनाना है जरूर। और जब खुद में विश्वास बैठता जाता, आपने देखा होगा जो जिसका जितना खुद में विश्वास है उतना बाबा के कार्य में आगे बढ़ता जाता। और यदि खुद में विश्वास की कमी है, ऐसा नहीं कि दूसरे ने मेरे में विश्वास नहीं रखा, उन्होंने तो मुझे ऑफर किया ये भी कर सकते ये भी कर सकते ये भी कर सकते, परंतु मुझे अपने में विश्वास की कमी थी, तो मैं फिर वो उठा नहीं पाई, मैं कर नहीं पाई। परंतु खुद में विश्वास रखे, बाबा में तो विश्वास है ही। तीसरी बात, परिवार में विश्वास रखे। यहां पर नाजुक बात आ जाती, किसकी गलती देख करके कहते हैं उसमें कैसे हम विश्वास रख सकते, नहीं, बाबा ने उनमें विश्वास रखा है और जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं सीखते जाएंगे, आगे भी परिवर्तन होता रहेगा, तो बाबा के बच्चे हैं तो जरूर विश्वास पात्र है, या अभी यदि नहीं है तो बन सकते, तभी तो बाबा के पास बैठे हैं। तो ट्रस्ट की बहुत बड़ी सब्जेक्ट आती है, तो जितना हम खुद को विश्वास पात्र बनाते जाते हैं, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि लौकिक हिसाब में ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, परंतु ज्ञान मार्ग में चाहे आध्यात्मिकता के मार्ग में जैसे जिसकी जो स्थिति है उस अनुसार के लोग सामने आते हैं। आप सोचो कि बाबा की स्थिति क्या थी, नंबर वन बन गए, परंतु बाबा की स्थिति ऐसे थी जो देखो इतनी सारी आत्माएं बाबा के पास आ गई, इतनों का जितना त्याग जितनी तपस्या जितनी सेवा बेहद की, तो बाबा की स्थिति द्वारा ऐसे लोग अट्रैक्ट होकर के बाबा के नजदीक आ गए। मधुबन किस आधार से चल रहा है, विश्वास के आधार से। कितना बड़ा मधुबन, अभी दादी जानकी को सोचना नहीं पड़ता कि मेन्यू बना या नहीं बना, दादी को जाकर के भंडारे में चेकिंग करने की जरूरत नहीं होती है कि टाइम पर खाना बन रहा है या नहीं बन रहा, अपने आप ही ऐसे विश्वास रख करके लोगों को ट्रेनिंग दी हुई है, नए लोग भी आते जाते हैं वो भी ऐसे ही सीखते जा रहे हैं, जो ऑटोमेटिक मशीन चालू है, विश्वास के आधार से हो रहा। तो यदि हम अपने में विश्वास रखें, परिवार में विश्वास रखें, तो बाबा का कार्य बहुत आगे फास्ट जा सकता। बाबा ने रिसेंटली कहा, मैं समझती लास्ट वीक की मुरली थी, चाहे 18 जनवरी की शाम की मुरली थी, परंतु बाबा ने कहा कि बच्चे पूछते हैं कि सत्युग कब आएगा, तो बाबा आपसे पहले प्रश्न पूछते हैं आप कब तैयार होंगे, आप पहले डेट दियो तो बाबा आपको बताए क्या आप सत्युग के लिए तैयार हो, आपके संस्कार सत्युग के योग्य बने हैं, तो फिर सत्युग आने में कोई देरी नहीं है। कलयुग को समाप्त होने की तो सब तैयारियां हो चुकी है, सब तैयारियां हो गई है, बाकी सत्युग आने की देरी है बाबा के बच्चे। तो जितना विश्वास पात्र बनेंगे बाबा के कार्य को हम और आगे फास्ट फास्ट बढ़ा सकेंगे। तो ये यदि पांच बातों पर हमने ध्यान दिया तो फिर वातावरण किस प्रकार से बनेगा। वातावरण में ये सब बातें तो होंगी ही, परंतु विशेष जो लोग आएंगे उनको एक सेफ्टी का स्थान लगेगा। बाबा का ये घर तो बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, छोटा सा स्थान भी क्यों न हो, परंतु छोटे से स्थान में इसी प्रकार से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है जो फिर ऐसे योग्य स्थान बने जिसमें बाबा की फास्ट सेवा हो सके। सिर्फ बड़े स्थानों से सेवा नहीं हो रही है, छोटे छोटे स्थानों से भी सेवा हो रही है, चाहे भारत में चाहे विदेश में। किसी ने ज्ञान एक छोटे सेंटर पर लिया परंतु वो बहुत अच्छे नेशनल लेवल पर सेवा करने का निमित्त बन गया। हो रहा है ऐसे कई स्थानों पर। तो सेफ्टी की जगह बना करके हम रखें। बाबा ने कहा ना कि एक आप किला बांधो, ऐसे प्यार का पवित्रता का किला हो जिसमें हरेक अपने को सेफ महसूस करे। किसी का मन ही न हो कि हम किले से पांव बाहर रखें। ऐसे नहीं कि बाबा के घर में बैठ जाना है दिन भर, अपनी जिम्मेवारियां भी है वो भी निभानी है, परंतु स्पिरिचुअल किला जहां से मन ये न कहे कि मुझे तो यहां इस बात की कमी नजर आती है इस कारण से मैं अपना पांव बाहर रखूं। नहीं, जो मुझे बाबा के द्वारा प्राप्ति होंगी, जो मुझे मिल रहा है वो यहां से ही मिलेगा। तो किला ऐसा हम बांधे जिसमें हर ब्राह्मणों को फीलिंग आए कि हाँ मुझे प्यार भी मिल रहा, मेरे में लोगों का रिस्पेक्ट भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, विश्वास भी है, हर प्रकार से वैल्यू भी है। जब ये भावना आएंगी तो किला बहुत मजबूत होगा, कोई उसमें हिल नहीं पाएगा, और मजबूत किले से फिर हाँ बाबा की प्रत्यक्षता हो सकेंगे। तो इस जनवरी मास में अभी भी कुछ दिन है, परंतु न सिर्फ ये एक मास के पुरुषार्थ की बात है, ये तो हर रोज के पुरुषार्थ की बात। तो जितना हम इन बातों पर ध्यान रखते चलेंगे उतना हमारी स्थिति भी आगे होंगी, परंतु बाबा की सेवा भी बहुत फास्ट स्पीड से आगे बढ़ती जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इस वर्ष कुछ नई बातें अवश्य होने वाली है। तो बाबा का जादू का खेल हम देखेंगे, परंतु पहले तो बाबा ने मेरे ऊपर क्या जादू किया। लोग कहते हैं ना कि यहां मत जाओ यहां जादू लगता, अच्छा जादू है ना, बुद्धि पारस बुद्धि बन जाए। पहले क्या थी, अभी बुद्धि में परिवर्तन आ गया, जीवन में परिवर्तन आ गया, हर एक फरिश्ता बन गया। ये तो भगवान की बहुत सुंदर जादू है, पहले क्या थे और अभी फरिश्ता बन गए। तो ये भगवान के जादू का खेल पहले खुद पर हम अनुभव करते चले, फिर और आगे देखेंगे भगवान को कैसे अपनी प्रत्यक्षता, किस आत्मा को बाहर वालों को टच करके उनके द्वारा बाबा सेवा करेंगे। बाकी तो दादी का तो फ्लाइंग सेवा चालू ही है। दादी का 18 जनवरी का प्रोग्राम पूरा हुआ तो दादी फिर अहमदाबाद और पुणे के चक्कर पर गई है, और फिर वापस आएंगी तो फिर नेक्स्ट बाबा का कार्यक्रम होगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट दादी की सेवा का ट्रिप होगा। हम सब भी बहुत अच्छी तरह से एक के पीछे दूसरा सेवा का ट्रिप बनाती जा रही है, ताकि भारत के अंदर छोटी बड़ी जगह कोई कंप्लेंट न करे। कहीं बड़े स्थानों पर जाना होता, कई बार तो दादी ऐसी ऐसी जगह पर जाती जिसका नाम मैंने नहीं सुना है, तो वहां पर भी बाबा के बच्चे बैठे हैं, भावना वाले बैठे हैं, तो दादी दादी के मन में है कि हर एक जो मुझे बुला रहा है मैं उनों की दिल की बात पूरी करूं। तो उस आधार पर इतनी सेवाएं भारत की चल रही है दादी के द्वारा, और तो बहुत सारी चालू ही है परंतु विशेष दादी के द्वारा भी। और दादी फिर यहाँ पर आएंगी मई महीने में, अप्रैल एंड मई मास, डेट अभी तक हमारे पास भी नहीं है जो आपको बताएं। और फिर दादी अमेरिका कनाडा का भी शायद टूर चलेगा, परंतु अभी तक तो ऐसे सोचा है कि यूके परिवार से दादी 9th-10th मई को मिले, फिर हॉल को ढूंढना होता, प्रैक्टिकल बातें कहीं सामने आती, परंतु वो जैसे होगा फिर आपको बताते जाएंगे। परंतु अभी तो पहले मधुबन, मधुबन कौन जा रहा है फरवरी मार्च में? ठीक, तो बाबा का कार्य तो वहां चालू ही है बहुत अच्छी तरह से, तो मधुबन की यात्रा और फिर उसके बाद दादी का आह्वान जी। ओम शक्ति।